ગુજરાતીમાં ચાલશે. 44 નંબરનો બોલ છે આપણે 29 પાને. અંદરના ભાવમાંથી, કાલે થોડુંક તો ચાલ્યું છે, ફરીથી લઈએ. અંતરના ભાવમાંથી, એનો અર્થ કર્યો ઊંડાણમાંથી. ક્યારે પણ આવું વાંચવાનું આવે ત્યારે મોટું હાઈફન હોય એનો અર્થ શું થાય? એનો અર્થ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ, એનો ખુલાસો, અંતરના ભાવમાંથી એટલે કે અંતરંગના ઊંડાણમાંથી. શબ્દોની નહીં, વિકલ્પ નહીં, ભેદ ધારી રાખેલું છે ઓપ્શન જ્ઞાન, એનાથી નહીં, અંતરના ભાવમાંથી, ઊંડાણમાંથી. ક્યારેક કોઈના વચન ઉપરથી પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય, એ વચન કેવા ખાતર કહે છે કે ખરેખર અંદરની લાગણીથી કહે છે. તો આખો પ્રયાસ એનાથી થવો જોઈએ, અંતરના ઊંડાણમાંથી, અંતરમાંથી. પૂજ્ય બેનસી એના માટે એક શબ્દ વાપરતા, અંતર તળમાંથી નાયકનો બોજ મહિમા હોવો જોઈએ. કોઈને દેખાડવા કહેવા માટે કે એના માટે નહીં, પોતાની દશામાં એવી અંદરમાંથી. જેમ ક્યારેક એવું બને કે એવો થાકેલો કોઈ માણસ આવ્યો હોય ને તો ઘરે આવીને શું કે મને બોલાવતાય નહીં તમે, એટલો થાકેલો હોય કે ખાવું છે પીવું મને જેમ કે ને બોલાવતા જ નહીં. એમ જેને સંસારનો થાક લાગ્યો છે એને અંતરના ઊંડાણમાંથી એ ભાવના જાગે છે કે મારે મારું હવે આત્માનું હિત કરવું છે, અને તો માર્ગ સરળ થાય, માર્ગની સૂજ પડશે. એના માટે કઈ વિધિ મારે કરવું છે એને ખ્યાલમાં, બાકી રૂચિ વગર ક્યારે પણ કાર્ય થવાનું એ નથી. તે માર્ગ સરળ થાય. આત્મા અંદર શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. ફરીથી શબ્દ શું છે? અંદર ને બહાર શું હોય? આત્મામાં બહારમાં વિકલ્પથી જોઈ અશુદ્ધતા દેખાશે, પણ અંદરમાં દ્રવ્ય સ્વભાવ સુધી પહોંચીશ તો આત્મા કેવો દેખાશે? શુદ્ધ ચૈતન્ય. પહેલું તો એક નિશ્ચિત કરવું પડશે, દ્રવ્ય સ્વભાવમાં અશુદ્ધતા હોય તો કોઈ દી અશુદ્ધતા ટળશે નહીં, અને પરદ્રવ્યથી જો અશુદ્ધતા થતી હોય તો અશુદ્ધતા ટાળવાનો આપણા પાસે કોઈ અધિકાર જ નહીં રહે, કોકની લાચારીમાં રહેવું પડશે. તો બે રીતે વિચારવાનું છે, દ્રવ્ય સ્વભાવ શુદ્ધ છે અને પર્યાયમાં મેં અજ્ઞાન ભાવે અશુદ્ધતા કરીશ. તો બે રીતે વાત રહેશે કે અશુદ્ધતા મેં પ્રગટ કરી છે તો હું જ એને પુરુષાર્થ દ્વારા ટાળી શકે, અને દ્રવ્ય સ્વભાવ શુદ્ધ હોવાથી એના આશ્રયે શુદ્ધતા ટળી શકશે. બે રીતે વિચારવાનું શું છે? બે રીતે શુદ્ધતા, સુખી થવા માટેનો વિષય કોણ અને એના માટેની વિધિ શું? તો દુઃખ સેના કારણે મેં ઉભું કર્યું છે? કર્મના ઉદયને કારણે, પરદ્રવ્યને કારણે દુઃખ થયું છે કે મારા પોતાના અજ્ઞાન ભાવથી થયું છે? અને મેં પોતે અજ્ઞાન ભાવે ભ્રાંતિ, અજ્ઞાનથી વિપરીતતા, આકુળતા, દુઃખ ઊભું કર્યું છે તો હું જ મારા સમજણના પુરુષાર્થ દ્વારા એને હું ટાળી શકીશ, એ વિધિ છે અને એના માટેનો વિષય. જેને જે વસ્તુનું જોતી હોય, વેદન લઈએ તો એના માટે આપણે શું કરીએ? કભી મુજે મીઠા કુછ ખાના હૈ, કુછ ખટ્ટા ખાના હૈ, હમ ક્યા કરેંગે? કોઈ ભી આઈટમ સિલેક્ટ કરેંગે ને? ખટ્ટા ખાના હૈ તો કોઈ ભી વસ્તુ લે લેંગે ને? નહીં, કોણ સી લેંગે? કોણ સી? નિંબુ. ખટ્ટા ખાના હૈ તો નિંબુ, મીઠા ખાના હૈ તો શક્કર આદિ. ક્યો એસા ક્યો? કુછ ભી લેંગે કુછ મિલ જાયેગા. વહાં હમ કહાં તક પહોંચતે હૈ? ઓ સ્વભાવ કિસમે, ખટ્ટાપને કા સ્વભાવ કિસ પદાર્થમાં. તો અહીંયા એ બહુ જ નિશ્ચિતપણે મારે સુખ જોવે છે, અકસાયપણું વિતરાગતા જોવે છે, તો પહેલું નક્કી કરવું પડશે કે શુદ્ધ સ્વરૂપ કોણ છે, આનંદ સ્વરૂપ કોણ છે. તો આત્મા અંદર શબ્દ શું કામ વાપરવો પડ્યો? પર્યાય બુદ્ધિમાં નહીં દેખાય. પર્યાય બુદ્ધિમાં શું દેખાશે? ભેદ દેખાશે. સંયોગમાં શું દેખાશે? ભૂતગલ દેખાશે. અને અંતરંગ સ્વભાવમાં જો વિચાર સ્વભાવથી વિચારણા કરીશ તો કેવો દેખાશે? શુદ્ધ ચૈતન્ય. જીસકો સમયસાર કી 14મી ગાથા મેં ક્યા લિયા, પાંચ બોલ સે વર્ણન ક્યા હૈ કે તું શુદ્ધ નહીં સે આત્મા કો દેખ, કૈસા આત્મા દિખેગા? અબધ સ્પષ્ટ, અનન્ય, નિયત, અવિશેષ ઓર અસંયુક્ત. કૈસા હૈ આત્મા? દ્રવ્ય સ્વભાવ સે દેખે તો મેં કૈસા હું? અબધ. અબધ માને મેં બંધાન નહીં હું, દ્રવ્ય કર્મ સે બંધાન નહીં હું, ઓર નો કર્મ સે સ્પર્શિત નહીં હું. મેં સ્વયં અસ્પર્શ હું ઓર બંધન સે રહિત મેં એ ચૈતન્ય તત્વ હું. એસા પ્રથમ નિર્ણય કરના પડેગા. મુક્ત સ્વરૂપ ન હો તો ઉસકે આશય સે મુક્ત કેસે હોગી? પર્યાય મેં દેખને પર કર્મ કે સાથ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ પના હૈ, નો કર્મ કે સાથ ભી એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ હૈ, લેકિન દ્રવ્ય સ્વભાવ મેં દેખું તો ઉસમે ન તો બંધન હૈ, ન તો પરદ્રવ્ય કે સાથ સ્પર્શ હૈ. એસે હી દ્રવ્ય સ્વભાવ કે સમીપ જાકે દેખે તો કોનસી ગતિ દિખેગી? કોનસી ગતિ જો ભી હોગી વહી દિખેગી ને? અભી હમ કોનસી ગતિ મેં હૈ? અભી હમ કોનસી ગતિ મેં હૈ? મનુષ્ય ગતિ મેં હૈ ને? મનુષ્ય ગતિ મેં નહીં, મનુષ્ય પર્યાય મેં હૈ. કોનસી ગતિ હૈ યા પર્યાય હૈ? અરે પર્યાય મેં દેખને પર પર્યાય દ્રષ્ટિ મેં ગતિ દિખતી હૈ. દ્રઢ સ્વભાવ મેં જાતે હૈ તો કોઈ ગતિ હિ નહીં દિખતી હૈ, કોઈ અન્ય અન્ય પન્ના દિખતા હિ નહીં. મેં અનન્ય હું, એકરૂપ હું, મુજે કોઈ ગતિ કા ભેદ મેરે મેં નહીં હૈ. મેરે મેં પર્યાય ગત હિના દિખતા ભી નહીં હૈ. એ સબ ક્યો? તો ફિર આતા હૈ વર્ણન, આતા હૈ શાસ્ત્ર મેં. એ પર્યાય મેં એસી તેરી દશા અજ્ઞાન ભાવ સે હૈ તો વો દિખાઈ દે રહે, લેકિન જિસ સમય સ્વભાવ કે સન્મુખ જાયેગા. જૈસે કોઈ જ્વેલરી શોપ હો, ઇસમેં આપ દેખેંગે તો ક્યા દિખાઈ દેગા? સોને કી આઈટમ હોતી હૈ જ્વેલરી, સુનાર કે દિન વહાં આપકો ક્યા, હમકો ક્યા દિખેગા? અલગ અલગ દિખતા હૈ ના, અલગ અલગ હૈ ને? વહાં સોના અલગ અલગ હૈ ના? હમારી દ્રષ્ટિ મેં ભિન્નપના દિખેગા ઓર સુનાર કી દ્રષ્ટિ મેં સોના હી દિખેગા. તો વહાં ક્યાં દો પ્રકાર હૈ ને? હમ જબી દેખતે તભી વો ઉસકા જો આકાર હૈ, ડિઝાઇન હૈ, વો છૂટ જાતી હૈ? નહીં, વહાં એટ એ ટાઈમ ક્યા હૈ? સોના હૈ યા ડિઝાઇન હૈ? સોના હી હૈ ના, ડિઝાઇન નહીં કે યા દોનો મેં સે ક્યા હૈ? દોનો એક એક સાથ મેં. બસ એહી હમે કાર્ય કરના હૈ, ભેદભાવો સે દ્રષ્ટિ ઉઠાના હૈ. હમ ભેદભાવો સે દેખતે હૈ તો એ અચ્છા હૈ, એ અચ્છા નહીં હૈ, એસે દો વિકલ્પ ખડે હુએ. લેકિન જો જ્વેલરી શોપ કા માલિક હૈ વો શામ કો ક્યા પૂછેગા? કિતની ડિઝાઇન બીચી વો પૂછેગા ના? ક્યા વો ક્યા પૂછેગા? કિતના સોના ગયા? એસે અહીંયા દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ મેં કૈસા હું? પર્યાયગત જ્ઞાન કા કસાય કા આદિ કા જો હાનિ વૃદ્ધિ હોતી હૈ વો સ્વભાવ કી દ્રષ્ટિ મેં નજર મેં આતા નહીં હૈ. મેં એક પૂર્ણ તત્વ હું, પર એસા પૂર્ણ તત્વ મેં ન અભી કોઈ હાનિ કી ગુંજાઇશ ઓર ન વૃદ્ધિ કી ગુંજાઇશ. યદિ વૃદ્ધિ કી ગુંજાઇશ હો તો ક્યા સિદ્ધ ભગવાન પુરુષાર્થ કરતે હોંગે કે નહીં કરતે હોંગે? અભી તો ઉનકો પુરુષાર્થ કરને કી કોઈ આવશ્યકતા નહીં હૈ. પુરુષાર્થ કરતે સિદ્ધ ભગવાન, અભી ઉનકો ક્યા પ્રાપ્ત કરના હૈ? ક્યા પ્રાપ્ત કરના હૈ? કુછ નહીં ના, ફિર પુરુષાર્થ ચાહિયે નહીં? अनंत वीर्य के स्वामी है। वीर्य पहला कौन सा पुरुषार्थ करना है, विपरीतता में से सम्यक पने में आने का, फिर अपूर्णता में से पूर्णता में जाए और फिर पूर्णता को टिकाए रखने का। तो निरंतर वीर्य माने क्या है, पुरुषार्थ की व्याख्या अमृत चंद्राचार्य ने 46 शक्तियों में कौन सी व्याख्या की है, वीर्य की व्याख्या, स्वरूप नी रचना ना सामर्थ्य, स्वरूप की रचना, निर्मल पर्याय की हर समय जो रचना होती है, रचना माने प्रगटता, इसमें किससे होती है, वीर्य से। तो ये निरंतर ये वीर्य से निर्मल पर्याय की सिद्ध परमात्मा को रचना हो रही, कहां तक, सादी, कब तक, सिद्ध भगवान का आयुष कितना होगा, सिद्ध भगवान का आयुष तो होगा ना कम से कम, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जन्म दूसरा होगा तो, ऐसा जरूर नहीं, उसी जन्म का भी आयुष होता है ना, आयु कर्म नहीं, इसलिए अच्छा, एक बात अच्छी बात है, आयुष कर्म नहीं है, और कुछ, और कुछ, चलो एक तो जवाब आया, और भी कुछ और सोचना, शरीर ही नहीं, आयुष क्या होता है, आयुष माने क्या, आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रागार रहने का काल की मर्यादा। किसी को अनंत काल का आयुष नहीं होता है, जो भी आयुष है वो क्या है, काल की एक मर्यादा, कौन सी मर्यादा, शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रागार में रहने काल की मर्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितना आयुष हो सकता है काल का, कितना काल का आयुष, 33 सागर का होता है, इससे ज्यादा, इससे भी एक सिद्धांत क्या सिद्ध होता है, आयुष माने काल की मर्यादा। इसे संयोग सदा टिकने वाला नहीं है, संयोग काल की मर्यादा है, और स्वभाव कैसा होता है, बेहद होता है, अमर्यादित होता है। तो फिर से प्रश्न कि सिद्ध भगवान को आयुष नहीं, क्यों नहीं है, पहले आयुष कर्म नहीं, दूसरा क्या है, शरीर ही नहीं है, तो फिर और एक तीसरा समय सार की पहली गाथा में इसके लिए सिद्ध भगवान की व्याख्या है ना, इसमें एक सरस अच्छा शब्द दिया अमृत चंद्राचार्य ने, स्वभाव भाव भूत तया, संस्कृत में क्या लिखा है, देखो ये सब गुरुदेशी हमारे आपने कहीं पत्तो न लगे, गुरुदेशी ध्यान दोरी ने क्या शु शब्द वापरो, सिद्ध दशा शू चाहिए, स्वभाव भाव रूपे पर्याय से। तो जैसे शक्ति रूप सामर्थ स्वभाव है, उसकी कोई मर्यादा नहीं, तो ये प्रगट स्वभाव है, सिद्ध दशा क्या है, प्रगट स्वभाव, और गुण क्या है, शक्ति सामर्थ रूप स्वभाव। तो जैसे शक्ति सामर्थ की, जैसे होता है शक्कर में एक्सपायरी डेट होती है ना, खांड में साकर लेवा जाइए तो इन्हें एक्सपायरी डेट वाचे ना, नहीं के कोई दी लेवाज न गया એટલે ખબર નથી, હસન એની એક્સપાયરી ડેટ તો હશે કે કેમ નહીં, સાકરમાં ગળપણની એક્સપાયરી ડેટ કેમ ન હોય, કેમ ન હોય, સ્વભાવ મેં કાલ કી મર્યાદા હોતી હી નહીં, ઓર કાલ કી મર્યાદા સંયોગ મેં હોતી હૈ। તો યહાં એ સિદ્ધ દશા કૈસી, સ્વભાવ ભાવ, કભી કભી એસા અપને સ્વભાવ કી મહિમા તો આય कि मैं कैसा हूं, जैसा यहां ना कि शुद्ध चैतन्य में हूं, मैं सिद्ध स्वरूप हूं, अरे सिद्ध स्वरूप हो तो मुझे पामरता क्यों याद आ रही है, मैं अपने को पामर क्यों स्वीकारता हूं, क्यों मानता, मेरा स्वभाव सामर्थ कैसा है, एक बार अनंत प्रतिकूलता आ जाए तो भी मैं टिक सकूं, ऐसा सामर्थ्यवान हूं, सातवीं नरक जैसी प्रतिकूलता भी मेरा स्वभाव को घात करने में समर्थ नहीं है। क्या सातवीं नरक में गया तो स्वभाव कैसा होगा, हीन हो गया क्या, इसमें कुछ बदलाव आया क्या, तो एक अंश प्रगट पर्याय में हीनता हो लेकिन स्वभाव सामर्थ्य तो वैसा का वैसा है, और मैं ऐसा परिपूर्ण तत्व हूं, मुझे संयोगों के सामने पामरता क्यों, उदय के सामने पामरता क्यों। तो ऐसा मैं आत्मा अंदर में शुद्ध चैतन्य है, ऐसी अंदर की रुचि से ऐसी भावना उठे और वस्तु का लक्ष्य सहित वांछन विचार करे तो मार्ग मिलता है। फिर से शब्द क्या दिया, देखो ये बोल में पूज्य गुरुदेव सिंह ने कितने बार अंतर अंदर शब्द दिया, तीन वाक्य में तीन बार आ गया। अंतर भाव में से पहला ही आया, फिर दूसरा में क्या है, आत्मा अंदर शुद्ध चीज, और तीसरा अंतरंग की रुचि से। बस ये सिद्धांत सीख लेना, क्या करना है, अंतरंग में ही करना है और हम बाह्य में ही कुछ न कुछ करना चाहते हैं। एक दृष्टांत गुरुदेव से देते थे, एक बूढ़ी बाई थी, उनकी एक सुई कहीं खो गई थी। कहाँ खो गई थी, उसकी झोपड़ी में वहां खो गई थी। वो बहुत ढूंढती है, नहीं मिलती है, तो वो क्या करती है, अंत बाहर में जहां उजाला था, प्रकाश था, वहां आके ढूंढती, क्योंकि अंधेरे में नहीं देखी तो उसका उपाय क्या है, उजाला में ढूंढेंगे तो मिल जाएगी ना, मिलेगी। अंधकार में अंधारा था, नहीं मिला तो कहां ढूंढने को गई, उजाला में गई, नहीं मिलता है। दो चार कोई यंग लड़के आए, पूछे आप क्या कर रही हो, कि मेरी सुई खो गई है, ढूंढता हूं। तो वो भी मेहनत करने लगे, एक दो घंटा में नहीं मिला तो पूछते कहां खो गई, तो क्या कहा, कहां खो गई है, मेरी झोपड़ी अंधारा है, तो वहां क्यों नहीं ढूंढते, कि नहीं मिलती है, इसलिए उजाले में ढूंढेंगे तो कभी ना कभी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, अरे जहां खोई नहीं वहां ढूंढेंगे तो कभी मिलने वाली, अरे मुश्किल लगे कठिन लगे लेकिन प्रयत्न करे तो अंधेरे में कभी ना कभी मिल जाएगी। और ऐसी गलती कौन करते है, कौन है? उसने ही किया ना, हम तो नहीं करते हैं ना, हम करते हैं, कभी क्या करते है? सुख है स्वभाव में और ढूंढते हैं पर में। सुख कहाँ है, स्व में, और ढूंढते हैं कहाँ, पर में। इससे एक और सिद्धांत समझ लीजिए, जहां हो वहां ढूंढे तो अनंत काल नहीं लगेगा। जो वस्तु जहां खो गई है वहां यदि हम ढूंढे तो अनंत काल तो नहीं जाएगा, और हम सुख को ढूंढते ढूंढ कितना काल निकल गया, अनादि से प्रयत्न करते ना, अनंत काल गया ना, और भविष्य में भी और कितना जाने वाला है, कितना जाने वाला है, नहीं अनंत काल तो जाएगा ना भविष्य में। तो ये अनंत काल गया उसका सूचित करता है कि जहां हम ढूंढते हैं वहां है ही नहीं, और जहां है वहां हम ढूंढते नहीं। तो अंतरंग में, अंदर में अंतरंग की रुचि से पूरा प्रयास। फिर अंतरंग माने क्या, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं, जहां वाणी विलास की आवश्यकता नहीं, जहां विकल्पों की जाल नहीं है, जहां बहिर्मुख धारणा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ऐसी अंतरंग रुचि में से हम कहीं ना कहीं विकल्पों कर लेते, संतुष्ट मान लेते, कम से कम कुछ याद रह गया संतुष्ट मान लेते हैं, कुछ बोल सकते हैं, शब्द ढूंढते हैं, खरेखर तो शू करवा जे उसे, समझी ने समावा जेवु छे, समझीने समावामां रोकावा जेवु नथी। अंतरंगमां पोताने समझण थई छे तो अंतरंगमां पोते करवा, कोई साधर्मी साथे तत्व चर्चा वात जुदी छे, पण जीवननो क्यारे प्रयोजन न बनवू छे, के बीजाने मने आवड्युं छे गणाने, एनाथी शुं थशे, बीजाने कई लाभ थशे, दूसरे से लाभ मानना बड़ी पराधीनता का दोष है। मेरे में क्या कमी है, दूसरे से मुझे लेना है कुछ, दूसरे को सोगानी जी के शब्दों में कहे तो क्या है, दूसरे से सुनना वो भी एक पराधीनता नहीं, एक इन्हें सोचे एक एना माटे दीनता छे, पामरता छे, બીજા પાસેથી શીખવું છે, બીજાને શીખડાવવું છે, એ પણ એક શું છે, એક પામરતા છે. અહીંયા તો પૂરા અંતર્મુખતા કા માર્ગ હૈ. તો અંતરંગ કી રુચિ સે ઉસકી ભાવના જાગૃત હો. અંતરંગ અપને શુદ્ધ ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા કી રુચિ સે ઉસકી ભાવના, ભાવના માને ઉસકી પ્રાપ્તિ કરને કી અંતરંગ મેં સે પુરુષાર્થ. પહેલે તો ક્યા ચાહીએ, પહેલે તો આત્મા કી રુચિ. અભી વિકલ્પાત્મક હૈ રુચિ, રુચિ કે સાથ મેં ભાવના, ઓર ભાવના કે પીછે પુરુષાર્થ. ઓર જહાં પુરુષાર્થ અંતરંગ કા હુઆ તો પરિણમન હુએ બિના રહેગા. જૈસે બાય મેં પુણ્ય કા ઉદય હો ઓર અનુકૂળતા ન મિલે એસા નહીં બનેગા. પર એસે હી અંતરંગ મેં રુચિ સે ભાવના હો તો પરિણમન હુએ બિના રહેગા નહીં. તો અંતરંગ કી રુચિ સે ઉસકી ભાવના, ઉસકી માને કોણ, ચૈતન્ય આત્મા કી, શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા કી ભાવના જાગ્રત હો. ઓર ઉસકે સાથ મેં, એ પ્રયત્ન કે સાથ મેં ક્યા હોતા હૈ, વસ્તુ કે લક્ષ સહિત વાંચન વિચાર કરે. દેખો ફિર સે અંતરંગ કી ભાવના, ઓર ભાવના કે સાથ સાથ મેં ક્યા હોતા હૈ, વિકલ્પ કે કાલ મેં વસ્તુ કે લક્ષ સહિત. ફિર સે વસ્તુ કે લક્ષ સે સહિત માને ક્યા, કોઈ ગુરુ વાણી સુનના, જીન વાણી સુનના, ઇસકે પૈસે નહીં કે મેં ધારણ કરકે રખુંગા, ઇસસે મુજે દૂસરે કો પ્રશ્નોત્તર કરને મેં ઓર સુવિધા રહેગી, દૂસરે કો મેં સમજાઉંગા. ભાઈ વૃત્તિ કે લીએ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય હોતા નહીં હૈ, બહિર્વૃત્તિ કે લીએ કભી ભી એ શાસ્ત્ર અંતર્મુખ હોને કા હી ઉપાય કે લીએ. તો અવસ્તુ કે લક્ષ હમારે લીએ ભી એ બહુ જરૂરી હૈ. હમ કભી ભી ગુરદેસી કી વાણી સુનતે હૈ, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરતે હૈ, લક્ષ ક્યા હોના ચાહીએ, શબ્દો કા ગ્રહણ યા વસ્તુ સ્વભાવ કા લક્ષ કરકે ઉસકા ગ્રહણ કરના. ઉગુરદે સે હમે એ વસ્તુ સ્વરૂપ કેસે સિદ્ધ કરકે બતા. હમે કોઈ તર્ક કમ આ જાય, કોઈ ધારણા મેં ક્ષોભસમ કમ હો જાય તો ઓ ક્ષમ્ય હૈ, લેકિન વસ્તુ કા લક્ષ નહીં છૂટના છે. જૈસે સમયસાર કી પાંચવી ગાથા ક્યા બતાએ, ચાર બોલ કોણ સે બતાએ, પહેલે પહેલે આગમ કા સેવન, યુક્તિ કા અવલંબન, પરાપર ગુરુ કા ઉપદેશ, ઓર ચોથા કોણ સા લિયા, અનુભવ, સ્વસંવેદન અનુભવ. એ ચાર સે આચાર દે કે હમે ક્યા પ્રગટ હુઆ હૈ, નિજ વૈભવ. એ ચાર સે મુજે હમારા નિજ વૈભવ પ્રગટ હુઆ, ઓર જો હમારા નિજ વૈભવ હૈ વો સબસે મેં એ એકત્વ વિભક્ત એસે શુદ્ધાત્મા કી બાત કહુંગા. તો તું ભી ક્યા કરના, હમારે જીતના શાસ્ત્ર કા અભ્યાસ કરના, તું ભી હમારે જૈસે તર્ક બુદ્ધિ લગના, હમારે ગુરુ જૈસે ક્યા લે, ઉન્હોને હમારે લીએ ક્યા કહા, તું બસ અનુભવ કરના. હમારે જીતના ક્ષોભસમ ન હો, તર્ક ન હો, અભ્યાસ ન હો, આવશ્યકતા નહીં, એક અનુભવ. કમ સે કમ એ સિદ્ધ કરતા હૈ, કરને યોગ્ય કાર્ય હૈ તો સ્વાનુભૂતિ હૈ. અનુભવ કિસે હોતા, કિસકો હોતા હૈ, બહિરાત્મા અંતરાત્મા પરમાત્મા તીન મેં સે કિસકો અનુભવ હોતા હૈ, કિસકો હોતા હૈ, નહીં નહીં આત્મા કો માને તીન આત્મા મેં સે કિસકે આત્મા કો અનુભવ કિસકો હોતા હૈ, સબકો હોતા હૈ, તીનો કો. હમે અનુભવ હો ગયા કે અનુભવ કરના હૈ, કરના હૈ ને, તો હમે તો અનુભવ નહીં હૈ ને, હો સકતા હૈ લેકિન અભી તો નહીં હૈ ને, અનુભવ હૈ. અરે અનુભવ ચેતન કો ન હો તો વો જડ હોગા. ફિર ઇતના હૈ કે બહિર્મુખ દ્રષ્ટિ મેં આકુલતા કા અનુભવ હૈ, ઓર અંતર્મુખતા કરેંગે તો અનાકુલ આનંદ કા વેદન પ્રારંભ હોગા, और पूर्ण उपयोग स्वरूप में जम जाएगा तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का वेदन के सिवा कोई चेतन पदार्थ होता ही नहीं है। तो अनुभव तो हो रहा है, फर्क क्या है, दिशा बदलनी है, अंतर्मुखता, जैसे है ना अंतरंग या वस्तु स्वभाव की चैतन्य स्वभाव की लक्ष्य करके। तो यहां कहते वस्तु का लक्ष्य सहित एक ध्येय बना ले। हमें किसकी चाहना है मोक्ष माने क्या है? उसका शब्द आप क्या कहेंगे? साध्य की चाहना है लेकिन ध्येय का स्वीकार नहीं करते। दो फर्क क्या है, ध्येय और साध्य में फर्क क्या है? मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, सिद्ध बनना है, नहीं आता है ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये क्या भगवान सिद्ध दशा क्या है? साध्य, साधना का जो फल हो उसका नाम साध्य कहते हैं। साधना के फल में जो पूर्णता की पूर्ण दशा की प्राप्ति उसका नाम क्या होता है? साध्य। और साधना का विषय है उसका नाम ध्येय है, जिसके आश्रय से अवलंबन से साधना प्रकट होती है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, उस विषय को ध्येय कहते हैं। फर्क क्या है ध्येय और साध्य में, फर्क क्या है? ध्येय मार्ग तो साधना है, मार्ग तो ध्यान है, ध्यान का विषय को ध्येय कहते हैं। ध्येय और साध्य दोनों परिपूर्ण होते हैं। ध्येय भी कैसा होता है? परिपूर्ण, जिसका आश्रय लेना है अवलंबन लेना है वो तत्व भी कैसा है? परिपूर्ण है। परिपूर्ण तत्व का आश्रय नहीं लिया परिपूर्ण कहां से प्रकट? तो वस्तु जो ध्येय तत्व है वो कैसा है? परिपूर्ण। साध्य जो है वो भी क्या है? परिपूर्ण। फिर भी एक फर्क क्या है? परिपूर्ण साध्य वो दशा है और परिपूर्ण आश्रयभूत ध्येय तत्व वो त्रिकाणी द्रव्य है। एक सापेक्ष है, एक निरपेक्ष है। सिद्ध दशा का नाम क्या है? पांच भाव है ना, जीव के पांच असाधारण भाव, औदयिक औपशमिक आदि। इसमें सिद्ध दशा का नाम क्या है? सिद्ध दशा का नाम क्या है? क्षायिक भाव। क्यों क्षायिक भाव उसका नाम दिया? कर्म का क्षय की इसमें सापेक्षता है। सिद्ध दशा का नाम है ना क्षायिक भाव। क्यों क्षायिक भाव उसको कहा? कि वहां कर्म का क्षय की क्या है? सापेक्षता। तो ये सापेक्ष तो है, सापेक्ष का आश्रय लिया नहीं जाता है, निरपेक्ष तत्व का आश्रय लिया जाता है। जैसे कोई खुद किसी के लोन लेके बिजनेस करते वहां क्या करे, हम लोन लेने को जाएंगे? तो यहां ये सिद्ध दशा वो एक समय की है परिपूर्ण, लेकिन वो दशा है, सापेक्ष है, वो अवलंबनभूत नहीं होती। और अपना त्रिकाणी द्रव्य वो परिपूर्ण तत्व है, वो निरपेक्ष तत्व है। और निरपेक्ष तत्व तो यहां कहते उस वस्तु का लक्ष्य सही। फिर से कहां पहुंचना है प्रकट करने के लिए? साध्य सिद्ध दशा। आशय करने के लिए निरपेक्ष परम प्राणामिक भाव, पंचम भाव, ध्रुव भाव, जिसको समय सार की छठवी नगाथा में क्या नाम दिया है? एक ज्ञायक भाव। ग्यारहवीं गाथा में क्या नाम दिया है? भूतार्थ। शब्द क्या दिया? भूतार्थ दिया है। चौदहवीं गाथा में अबद्ध स्पष्ट अनन्य, ऐसे बहुत से प्रकार। तो ऐसे जो वस्तु के लक्ष्य सहित, फिर शब्द दूसरा दो क्यों सा दिया? वांचन और विचार। फिर से क्या फर्क? वांचन विचार। वांचन प्रारंभिक दशा है, इससे आगे विचार दशा। वांचन में कर्णेन्द्रीय और चक्षु इंद्री और विचार में मन। फर्क क्या लगता है कुछ? जो वांचन करते या सुनते हैं गुरुवाणी आदि से करते, स्वयं करे तो इसमें क्या होता है, इंद्री से अविषय स्वयं पढ़ते हैं तो चक्षु इंद्री का है, सुनते हैं तो कर्णेन्द्रीय, इससे भी आगे बढ़ना है। हम संतुष्ट कभी हो जाते हैं एक घंटे का, बहुत बार ऐसा लगता है ना, नियम लिया हो कि भाई हर रोज तो एक घंटा तो स्वाध्याय नहीं, गुरुदेव से तो कितने घंटे के कह रहे थे नहीं, पहले तो इतना तो जीवन में वांछन आदि विचार आदि, ऐसे जरूरी नहीं कि वांछन विचार के लिए चार घंटा बैठा, नहीं, हर समय हम उसकी विचारणा कर सकते हैं। मान लो कहीं जॉब के लिए ट्रैवलिंग करना है, कम से कम यहां से चर्चगेट जाएंगे कम से कम 45 मिनट तो लगती है, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं नहीं, विंडो के बाहर देखेंगे तो हर रोज नया नया बिल्डिंग दिखेगा ना, क्या दिखेगा, अरे इससे ऐसा नहीं हो सकता है, ये क्या वही का वही एक, तभी भी कुछ वांछन करो, नहीं करो तो चिंतन करो, ये भी कर सकते हैं, लेकिन रुचि के अभाव में उपयोग भटकता रहता है, कुछ इसमें प्रयोजन कुछ कार्य नहीं कर सकते, फिर भी क्या करते, उपयोग कहीं ना कहीं भटकता रहता है। तो उसी समय मान लो वांछन न करे तो एक चिंतन भी कर सकते है कि नहीं कर सकते, तो यहां वांछन और वांछन के बाद विचार, फिर से फर्क क्या है, वांछन आदि में ऐसा उपयोग स्थूल है और विचार में उपयोग की सूक्ष्मता होती है, मन के संबंध में, और मन के संबंध में हित अहित का निर्णय होता है। चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय के निमित्त से क्या होता है, पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं, लेकिन इसके बाद में जो हित अहित का निर्णय करना है वो किस में होगा, इंद्रिय के अवलंबन से नहीं होगा, मन के निमित्त से होगा। और इसलिए सम्यक दर्शन के लिए कितना क्षोभसम आवश्यक है, संग्निपने का, क्यों लिया इतना, असंग्नि पचेंद्री भी नहीं लिया, क्योंकि इंद्रियों का काम है ये, तो चक्षु इंद्री कहेंगी ये एक कलर है, कर्णेन्द्रीय कहेगी ये शब्द है, लेकिन वो हमारे लिए हित रूप है या अहित रूप है वो निर्णय किस में होगा, मन के संग में होगा। इसलिए विचार तो अवश्य करना है। कोई भी बाहर में कोई प्रॉब्लम आता है, प्रश्न आता है, हम क्या पहले करते, पहले जरा सोचने दो मुझे, पहले वही आएगा कि भाई तू, कोई हमारे पास कोई, हम गुजराती में वडिल कहे ना आपने, एनी पासे क्या पण प्रॉब्लम लेने जाए पहला सु कैसे आपने, तो मैंने पहला पूरी बात कर हूं विचारी ने कैसे, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि निर्णय के पहले उसकी विचारणा होती है। तो हमें तत्व के लिए प्रथम देखिए गुरुदेव से हमें स्टेज बताते हैं कि पहला, फिर से क्या पहले लिया, क्या है पहले, क्या स्टेज लिया, अंतरंगनी रुचि से पहले भावना जागृत हो, मुझे इस भाव में आत्महित का कार्य अवश्य करना है, ऐसी भावना जागृत हो तो वस्तु के लक्ष्य से, दिस इज द फॉरमोस्ट कंडीशन, कोई याद रखने के लिए या किसी को समझाने के कोई सही माने में स्वाध्याय करना है, प्रयोजन भी सही नहीं है तो स्वाध्याय का फल नहीं मिलेगा। स्वाध्याय करता हूं थोड़ा पुण्य भी बंधेगा और पुण्य से मुझे कोई अच्छा भव मिलेगा, मिलेगा ना, इसमें बुराई नहीं ना, कोई अच्छा भव मिले इसमें बुराई नहीं ना, अच्छा भव मिले में बुरा है, यस नो, हाँ अच्छा है ना, यहाँ स्वर्ग में जाएंगे, वहां से समोसर में महाविदेह में जाए, सिमंदर भगवान आदि तीर्थंकरों की वाणी सुनेंगे, वहां तो कोई भोजन करना थकान लगे ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठंडी गर्म तो वहीं जाएंगे समोसरण में, वहां अकृत्रिम जिन मंदिरों का दर्शन करने को जाएंगे, अच्छा है ना आइडिया, कम से कम तो अच्छा है, हाँ मृत्यु के बाद जाएंगे, हम वहीं जाएंगे, वो जितने टाइम तो बीच में तो टाइम में करेंगे ना, तभी तो मरण के बीच में, जन्म और मरण के बीच में, और वहां तो बड़ा आयुष होता है, हमारे यहाँ तो कम होता है, वहां तो है ना, तो करेंगे ना धर्म ध्यान करेंगे ना। अरे जिसकी रुचि अभी नहीं है वहां बाद में करेंगे, ऐसा भरोसा कहां से लाया? और यदि तुझे रुचता है तो अभी करने में कौन सी आपत्ति है? यदि ये फिर से रुचि बात तो हो गई है, रुचि को काल की क्या बोलते हैं गुजराती में, कहे कारणों भेद इन्हें स्वीकार्य नहीं। रुचि लगती है तो बाद में करूंगा, भविष्य में करूंगा, ऐसा होता ही नहीं। रुचि को कल करना है कि आज करना है, ये रुचि का ऐसा नहीं होता है, बाद में करूंगा। अभी जो बात, जो तत्व तुझे अभी रुचता नहीं है, मैं बाद में करूंगा, ये कहां से ऐसा भरोसा कहां है? चलो कोई कह के नहीं नहीं मैं ये भाव में ही करूंगा, लेकिन अभी तो थोड़ा कैसा हूं, नहीं युवान हो कुछ लाइफ में क्या करना है, अभी थोड़ा नहीं सेट होना है ना। संसार में कोई सेट होता है कि अपसेट ही होते सब लोग? कोई संसार में सेट नहीं होते, कोई अपसेट, एक अनुकूलता मिली तो भाई में। इसका एक अच्छा दृष्टांत स्टोव देश में दिया है, घट्टी यंत्र आपने देखा होगा, घट्टी यंत्र पहले वो पानी के भरते है ना, उसमें वो जो डिब्बे होते हैं ना, ऐसा कभी होगा कि सभी डिब्बे पानी से भर गया हो? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? घटी यंत्र घूमता रहता है, नीचे है तो पानी भरता है, ऊपर जाए तो खाली होता है। ऐसे ही संसार की दशा में सबको सभी अनुकूलता मिलने वाली नहीं है, एक अल्प मिला तो दूसरी तो वहां खड़ी होगी। सही मानने में हम चाहते हैं सो मिलते हैं, कि जब मिलने योग्य है उसकी चाहना करते हैं? नहीं समझ में आया, हम चाहते हैं सो मिलते हैं, आई गेट व्हाट आई विश, नहीं। कोई भी को ऐसा मिथ्या अभिप्राय नहीं करना कि मैं चाहता हूं सो मिलता है, मिलने योग्य की चाहना करता हूं, फिर पुण्य का योग हो तो मिलता है। हमारी चाहना मान लो यहां से सोनगढ़ कितने समय में पहुंचने की है? कितने, एक घंटे में, दो घंटे में सोनगढ़ पहुंचने की, इंग्लिश में कहें गिवन ए चॉइस, सोनगढ़ कितने समय में पहुंचना है? चाहना तो ऐसी है एक समय में पहुंच जाओ, लेकिन यह संभव नहीं है, तो मिलने योग्य की चाहना करता हूं। क्या अर्थ हुआ? जो चाहता हूं सो मिलता है, कि मिलने योग्य की चाहना करता हूं। अरे जगत में हमारी तृष्णा इतनी है कि तृष्णा पूर्ण हो इसे विषय ही नहीं है जगत में। तृष्णा के पीछे सुख के लिए मत दौड़ना। अया तो इसलिए फिर से अया कहां से प्रारंभ किया पहले? रुचि से, अंतरंग सी रुचि से भावना। तो फिर प्रयत्न क्या करना है? अपने वस्तु स्वभाव का लक्ष्य करके वांछन और विचार, फिर से दोनों है। हमें ऐसा नहीं समझना सुबह एक घंटा गुरुदेसी का सुन लिया और पूरा दिन का कोटा, पूरा क्या कोटा सिस्टम में जाते हैं ना हम तो। फिर से रुचि के लिए कितना काल होता है? धर्म की आराधना के कितने दिन है? ये 10 है ना, 10 लक्षण पर्व 10 दिन होते हैं ना। आराधना के कितने दिन है? 10। और पाप करने के कितने दिन पूरे साल भर में रखे? पाप करने के कितने दिन रिजर्व किए हैं? कोई कितना कोटा दिया है? अमर्यादित काल पाप के लिए है, और धर्म की बात आती है तो हम काल की मर्यादा, ये रुचि को सूचित नहीं करता है। हर समय मेरे लिए आराधना का है, ऐसे नहीं समझना भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, और आराधना का अंत कभी आ जाएगा? नहीं, 14 चतुर्दशी के दिन पूर्ण होगी ना आराधना। आराधना प्रारंभ की है, कभी भी अंत नहीं है। मुझे अनंत काल का स्वभाव की आराधना करनी। काल पूर्ण होगा, आराधना की भावना परिणति निरंतर चल। आराधना में मर्यादा क्या? पैसा कमाने की तृष्णा में कितना मर्यादा करते हैं? गुरुदेव सिद्ध ऐसे बहुत बात करते थे, जैसे नैरोबी मरवा गए कि पैसा कमाने के लिए आए थे, लेकिन मर्यादा की थी कितना साल। और यहाँ धर्म की बात आ जाए तो पहले से क्या प्रश्न शुरू हो जाए, कितना काल तक करना हमें। देखिए हमारे अप्रोच कैसा होता है, बार में पैसा कमाने के लिए कभी काल की मर्यादा की है? क्यों नहीं ऐसे करते हैं? उसकी इतनी रुचि है, पैसा कमाऊंगा तो सुख मुझे मिलेगा। और जब भी धर्म की बात आती है तो क्या करते हैं, मर्यादा करते हैं। नहीं, ओवरडोज नहीं होना चाहिए ना। ये रुचि के अभाव में ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, जिसको जिसकी रुचि वो काल और क्षेत्र को गुण कर देता है। तो यह वस्तु के लक्ष्य से वांछन विचार करे तो मार्ग मिले। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक सबको तो पता ही है, उसके रचयिता कौन है? टोडरमल जी। उसको और भी कुछ टाइटल दिया है टोडरमल जी के लिए? बहुत बड़ा है, समझ सकते हैं आचार्य कल्प माने क्या, जिसमें आचार्य जैसी कल्पना कर सकते हैं। वे निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य नहीं थे, पर जैसे आचार्यों ने धर्म की प्रभावना के लिए जीवों पे करुणा करके शास्त्र की रचना करते हैं, ऐसी उन्होंने ये रचना की। तो आचार्य जैसा कार्य किया है, इसलिए उसको क्या दिया है, आचार्य कल्प। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितना सब्जेक्ट समझ लो, प्रारंभ कहां से कर लिया, पहले ही अध्याय में नमस्कार मंत्र से प्रारंभ करके पंच परमेश्वरी का स्वरूप लेके प्रारंभ कर लिया है। ये तो हमारा सौभाग्य नहीं कि वो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन जितना कहा इतना इतना विस्तार किया है। स्वयं स्टेटमेंट समझाते थे, इसमें से ही कोई ना कोई प्रश्न उठा के हमारे मस्तिष्क में कोई प्रश्न आए, इसके पहले उन्होंने प्रश्न रख दिया होगा और उसका समाधान करते। कर्णानुयोग का विषय लिया, अन्य मत में क्या विपरीत है वो भी सब ले लिया, पूरा विषय। और सबसे महत्व हमारे लिए खास कौन सा है, कौन सा अधिकार है? सातवां अधिकार। क्यों क्यों? उसका टाइटल क्या लिखा है सातवें अधिकार में? जैन मत अनुयायी सम्यक दृष्टि का। जैन मत का अनुयायी तो सम्यक दृष्टि ही होता है, मिथ्या दृष्टि थोड़ी होता है कोई। जैन मत को अनुसरे, सर्वज्ञ का जो अनुसरण करे वो मिथ्या दृष्टि होता है कि सम्यक दृष्टि होता है? टोडरमल जी को आश्चर्य होता है, तू जैनी है, जैन मत को मानता है, पंच परमेष्टि अरियन सिद्ध पर मानता है और फिर भी मिथ्यात्वर है। जैन दर्शन को न माने तो विपरीतता रहे वो तो समझ सकते हैं। और इस प्रकार फिर उसमें हमारी तीन मुख्य जो दोष है, कौन तीन दोष मुख्य? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, तीन प्रकार का वर्ण। और बहुत विस्तार से नौ तत्वों में एक एक तत्व की क्या भूल है, फिर एक एक में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र में विपरीतता, चार अनुयोग में पढ़ने में क्या विपरीतता, बहुत प्रकार से। पूज्य गुरुदेव जी को सर्वप्रथम पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक कभी मिला? गुरुदेव जी कभी 82 की साल में, 82 के साल माने गुरुदेव जी की आयु तभी कितनी थी? 46 ने 82 गणी लेवाना कितना था, 36 साल। गुरुदेव जी की 36 साल की उम्र में उनको राजकोट में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला। और मिला पढ़ते थे तो इतना रस लगा है कि आहार पानी के टाइम हो समय हो जाए तो भी लक्ष्य नहीं रहता था, इतना लगा। और फिर तभी ऐसा नियम रखते थे कि शास्त्र लेके कहीं या दूसरे गांव नहीं जाए, तो वहां पढ़ते और वहां रख देते थे। लेकिन उनको तो बहुत तरस आया था, रख दिया। फिर 2 साल के बाद 1984 विक्रम संवत की बात है, बगसरा करके सौराष्ट्र में गांव है, वहां एक भाई ने गुरुदेव से फिर से मोक्ष मार्ग पका सके। ऐसे ही कोई ऐसे होता था कि कहीं कहीं गुरुदेव से जाए तो श्रावक लोग के पास कोई शास्त्र हो तो पढ़ते थे, गुरुदेव जी को देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि गुरुदेव जी का तभी कैसा प्रसिद्ध था कि ये आप पहले लिया था ज्ञानी ध्यानी, तो गुरुदेव जी का तत्व तो दिया, उन्होंने दिया। दूसरी बार गुरुदेव जी ने पढ़ा और तभी एक कौन सी भावना जागी कि सातवां अधिकार स्वयं ने नहीं लिखा, दूसरे के पास लिखवा लिया है। किसी को ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी ने स्वयं लिखा, ऐसा नहीं, दूसरे के पास लिखवा दे। फिर पुस्तक रख दिया, सातवां अधिकार साथ में ले लिया। फिर 2 साल के बाद सोनगढ़ के बाजू में ही 50 किलोमीटर दूर एक ढसा करके गांव है राजकोट की तरफ, ये तो वहां फिर से गुरुदेव जी, ये परिवर्तन पहले की बात है, वहां गुरुदेव जी गए, वहां स्थानकवासी के उपाश्रय में गए। तभी एक अलमारी बोलते हैं ना आप, अलमारी बंद थी, गुरुदेव जी ने ऐसे ही देखने के लिए कि क्या शास्त्र को क्या होगा खोला, तो पूरी अलमारी क्या थी, खाली थी, सिर्फ एक ही पुस्तक था। कौन सा था? मोक्ष मार्ग। गुरुदेव जी को जैसे समय सार मिला ऐसे इसमें से भी, दो में एक फर्क क्या है? ऐसा समय सार में अपने अध्यात्म की टोडरमल जी ने तत्व की एक श्रद्धा दृढ़ बने, इस अपेक्षा है पूरी कि उन्होंने इसमें से इतना कि गुरुदेव जी को एक स्वयं अकेले अपना साधनानुतिक करुणा बुद्धि से हम जैसे जीवों पे करुणा करके उपदेश देना, तो इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्नों लेके गुरुदेव जी ने अभ्यास इतना गहराई से किया कि ये फिर तो आगे परिवर्तन के बाद तो इस पर से प्रवचन भी गुरुदेव जी ने एक ये जो पुस्तक है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना किरणों करके पुस्तक भी है, थोड़े से प्रवचन तो रिकॉर्डेड भी है। तो यहाँ फिर से मोक्ष मार्ग प्रकाशक, फिर से नाम क्या दिया है? मोक्ष मार्ग, फिर शब्द है प्रकाशक, प्रकाशक माने मोक्ष मार्ग को जिसमें बनाया है, तो प्रकाशित माने क्या, पहले से ही है मोक्ष मार्ग, पहले से ही है, पहले से ही है ना मोक्ष मार्ग, तो अनादि से पहले से है, इस वन एंड द सेम। मोक्ष मार्ग तो अनादि से है, उस पे प्रकाश डाला है। जैसे रात्रि में अंधकार हो, सुबह होते सूर्य प्रकाश होता है तो दुनिया नई बनती है, बनती है कि अनादि से है। रात्रि में भी दुनिया तो थी, फर्क क्या हुआ? जो था उस पे प्रकाश डाला तो उसके स्वरूप का ख्याल आया। तो यह मोक्ष मार्ग पे क्या डालते हैं टोडरमल जी? प्रकाश। और प्रकाश डालने से क्या होता है? मोक्ष मार्ग का सही स्वरूप क्या है हमें पता चलता है। तो मोक्ष मार्ग क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्याय है, तो किस गुण की पर्याय है? पर्याय है तो कोई ना कोई गुण की तो होनी चाहिए ना, कौन से गुण की परी? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, 3 गुण की पर्याय को मोक्ष मार्ग कहते हैं। अटलू बुद्धू कह दी तो हजी कहीं बदलाव क्या है? मोक्ष नहीं चाले ना, अटलू बुद्धू आम झीणू झीणू नहीं करवाना बुद्ध आगण, क्या है मोक्ष मार्ग? पर्याय है, सही बात है। चलो कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, 3 गुण की पर्याय को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तत्वा सूत्र में उमा स्वामी ने कौन सा सूत्र दिया है? तो है ना सम्यक दर्शनान चारित्राणी। तो मोक्ष मार्ग में कितनी गुण की पर्याय होती है? कितनी गुण की? तीन नहीं तो तीस, 300, 3000, क्या बोले कितना लेना है? आत्मा के सर्व गुणों की निर्मल पर्याय का आंशिक पना, उसका नाम मोक्ष मार्ग। तीन की तो मुख्यता से बात ली है, बाकी सभी गुणों की मोक्ष मार्ग में सभी गुणों की टोटल में जिन लिखा है ना, ज्ञानादि एक देश प्रकट होते मोक्ष। तो अनंत को कह नहीं पाते हैं, कह सकते नहीं, संभव नहीं है, तो तीन गुणों की मुख्यता से वर्णन किया जाता है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग फिर से पर्याय, सात तत्वों में लेवे तो मोक्ष मार्ग किसमें आएगा? संवर और निजरा। उसका अर्थ क्या हुआ? संवर निजरा रूप मोक्ष मार्ग है, उसका अर्थ क्या हुआ? मार्ग किसको कहते हैं, प्रारंभ को या अंत को? बीच का है, उसका अर्थ क्या हुआ? अपूर्णता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, फिनिशिंग भी नहीं है, दो के बीच में ऑन द वे, जैसे कहते ना ऑन द वे, रास्ते पे है, मार्ग पे है, उसका अर्थ क्या है? कितना मार्ग कटा हुआ है और कितना और काटना बाकी है, तो मार्ग है, अपूर्णता है। तो ए मोक्ष मार्ग संवर निजरा अपूर्णता को बताते हैं, और ऐसे मोक्ष मार्ग जिसको प्रकट होता है उस आत्मा को हम क्या कौन से नाम से जानते हैं? अंतरात्मा। पर्याय अपेक्षा से तीन प्रकार है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये मोक्ष मार्ग जिससे प्रकट हुआ है वो कैसे होते हैं? अंतरात्मा, उसको ही हम साधक आत्मा कहते हैं। तो ये कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है? चौथी गुणस्थान से लेके कहां तक होता है? बारहवीं गुणस्थान तक, जिसको छह डाला में फिर इन तीन के प्रकार दे भेद करके जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्कृष्ट अंतरात्मा। परमात्मा के कितने प्रकार है? जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, कौन से? सकल विकल के अलावा, सकल निकल के अलावा परमात्मा के तीन भेद कौन से होते हैं? नहीं, जगन मध्यम उत्कृष्ट नहीं होते, क्यों नहीं होते? पूर्ण हो गए, इसमें अभी क्या भेद करना है? नहीं, परमात्मा के दो भेद होते होंगे ना, एक पद्मासन और एक खड़गासन, इसे भी भेद नहीं? पूर्णता में भेद होता नहीं, और विपरीतता में, विपरीतता ही पूर्ण, इसमें क्या भेद करना? अंतरात्मा में, मार्ग में ये तीन भेद आते। तो ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि वांछन सही हो, फिर भी जो मान और पूजा के लिए पढ़ता है उसका ज्ञान विपरीत है, गलत है। फिर से बहुत जरूरी से, वांचन माने शब्द प्रयोग जिन वाणी में जैसी कहे ऐसा ही करता है, लेकिन कमी कहां रह गई? प्रयोजन में। जैसे ही जिन वाणी है, शब्द में ऐसा हो, जिन वाणी जैसा ही अर्थ करके कहेंगे, लेकिन वहां कुछ मान के लिए, प्रसिद्धि के लिए, कई पुण्य कमाऊंगा, बाय में कुछ कोई अनुकूलता मिलेगी, वहां वांचन करूंगा तो दूसरे पे मैं कुछ ओब्लाइज करूंगा, मुझे कोई लाभ मिलेगा, ये क्या है? विपरीतता है। जिनवाणी आत्महित के लिए है, बाह्य कोई लाभ के लिए नहीं है। अंतरंग मेरा आत्म कल्याण कैसा हो, ऐसा नहीं कितने व्यक्ति को समझाए तो हमें लाभ होगा, नहीं एक? गुरुदेश, हाँ, तारे ही तारे के सूचे, तारे ही तारे के तारे ही तारे, तारे ही तारे के तारे ही तारे, ये बधु एक न एक। स्वयं बहु समुद्र को तैरता है तो दूसरे को तरने में निमित होता है, स्वयं जो पानी में डूबे जा रहा है वो दूसरे को क्या सिखाएगा? तो जो साधक आत्मा है, जिन्हें अपनी साधना प्रारंभ की, वो दूसरे के निमित्त होता है। लेकिन वहां ऐसी कोई अपेक्षा न हो कि दूसरे को मैं समझाऊंगा, इससे मुझे कुछ लाभ हो। फिर से एक ऐसी वृत्ति क्यों रहती है, दूसरे से कुछ प्राप्त करने की वृत्ति क्या सूचित करती है? उन्होंने अपने आत्मा को अपूर्ण माना है। दूसरे से कुछ मुझे प्राप्त करने की वृत्ति है, उसने अपने आत्मा को परिपूर्ण माना ही नहीं है। कौन सा एक गुण है जो परिपूर्णता को सूचित करता है? सोल में शक्ति है, त्याग उपादान शून्यता शक्ति। पहले तो था ना, मुझे आपको नहीं पता होगा ना, रुपया आना होते थे, आना सोलह आना कहते हैं ना, सोलह माने पूर्णता। तो सोलहवीं शक्ति किसको बताती है? पूर्णता को, कि जिसमें न तो कुछ त्याग करना है और जिसमें न किसी कुछ ग्रहण करना है। क्यों नहीं ग्रहण त्याग करना है? पूर्ण तत्व में ग्रहण त्याग क्यों नहीं होता है? पूर्ण है, पूर्ण में क्या अपूर्णता है कि उसमें कुछ ग्रहण करके पूर्णता कर, और पूर्ण तत्व में क्या विपरीतता है जिसका त्याग करना है? दो प्रकार हो सकते हैं, अपूर्णता के लिए कुछ ग्रहण करना पड़ेगा और विपरीतता होगी तो कोई त्याग करना पड़ेगा, लेकिन मैं पूर्ण तत्व में ग्रहण त्याग की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं अपूर्ण भी नहीं हूं और मेरे में कोई विपरीतता भी नहीं है। इससे फिर क्या सीखना है? चलो इससे सबसे ये तो शक्ति की व्याख्या सीख ली, ग्रहण त्याग से शून्य हूं, रहित हूं, न कुछ ग्रहण करना है न है उसमें से कुछ त्याग करना। इससे क्या फायदा क्या होगा? सीख तो लिया, मैं परिपूर्ण हूं सीख तो लिया। धर्म के बहाने भी हम ग्रहण त्याग विकल्पों में उलझे रहते हैं, और किसी के नाम से, धर्म के नाम से भी कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है, विकल्पों में उलझे रहते हैं। मैं एक परिपूर्ण तत्व हूं, पूर्णता में विकल्प क्या करना? एक और भी समझ ली, विकल्प कभी करना पड़ता है तभी या नहीं है तभी? नहीं है तभी विकल्प करना है ना, मेरे में नहीं है इसका कितना विकल्प करेंगे? अरे जो तेरे में नहीं है उसका विकल्प क्यों कर रहा है, और जो तू है उसके विकल्प क्या करता है? है उसका क्यों विकल्प करना, और जो मेरे में नहीं है, नहीं विकल्प करेंगे ना कि नहीं मेरे में कौन से नहीं। एक मान लो एक सोसाइटी में रहते हो, फिर हम सोचेंगे मेरे कौन मैं कौन फ्लैट मेरे नहीं, वो सोचेंगे नहीं, तो मेरा है मेरा ऐसा विकल्प सोचेंगे। हे उसका क्यों विकल्प करना और नहीं है उसका भी क्यों विकल्प करना? विकल्प मात्र से रहित ये परिपूर्ण तत्व की ये साधना करें। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, किसी का क्षोभसम के वश वाणी के वश वांचन सही हो, जैसा है ऐसा ही छह द्रव्य का वर्णन करे, सात तत्व नौ पदार्थ का द्रव गुण पर्याय का उत्पाद सभी जैसा है जिन वाणी में जैसा ही किया लिखा है ऐसा ही धारणा ज्ञान में लेके वर्णन करे, लेकिन जो मान और पूजा, पूजा माने ख्याति प्रसिद्धि, मान के लिए वो पढ़ता है स्वाध्याय कराता है तो क्या है? उसका ज्ञान ही विपरीत गलत मिथ्या है। इससे बहुत सीधना है, प्रयोजन में कभी भी विपरीतता तो नहीं, हीनता भी मत लाना। जो प्रयोजन मेरा है पूर्णता की प्राप्ति और पूर्णता की प्राप्ति के लिए आश्रयभूत तत्व, इसमें कभी भी हीनता भी न होवे। तो ये जिसका ये प्रयोजन ही गलत है, उसका ज्ञान गलत है, उसका हेतु जगत को प्रसन्न करने का और अपनी विशेषता मोटप माने अपनी अधिकता ये पोषने का होता है, तो उसका बद्धू शब्द दिया, बद्धू माने सब ही, सब ही कितना भी, और हमारा तो कुछ ज्ञान नहीं है, चाहे सो कितना ज्ञान हो, क्षोभसम कितना हो, ग्यारह अंग का ज्ञान हो तो वो सब भी वहां पढ़ना विचारना सब क्या है? अज्ञान है। फिर से उसका हेतु, उसका मन जो दूसरे को समझाने में पड़ा है, उसकी अधिकता रखता है, उसका प्रयोजन, उसको लाभ क्या साक्षात है, जगत को क्या करना है, प्रसन्न। और ऐसा ही होना चाहिए ना, जगत को प्रसन्न हो ऐसा उपदेश देना है, या जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वैसा कहना, कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, सही तत्व का उपदेश देना, लेकिन जगत को जो प्रसन्न करना है और उसके द्वारा अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपनी अधिकता, उसकी जिसको चाहना हो उसका सभी पढ़ना विचारना कहना, वो सब क्या है, अज्ञान है। इससे हमें बहुत, इससे क्या कहते हैं गुजराती में, कहें आपने सावधान कह रहा, चेतावनी कह, क्या रे पण कोई ने एक बहुत सरस जगत ने समझावी देश एवो क्या रे पण उत्साह करी सने। तीर्थंकर जेवा पण पोतानी दिव्य ध्वनि द्वारा आखा जगत ने समझावी न से। तो तीर्थंकर थी अधिक आपड़ा पुण्य छे, वाणी नो योग छे के क्षोभसम छे के पवित्रता काई ज नथी। तो एमने पण न थई सक्यू, ऋषभदेव नी वाणी थी एमनो पोत्र पण नथी समझे, तो तू कोने समझाय। हूँ जगत ने समझावी देश एवो अभिमान उत्साह क्यारे राख, स्वरूप ने समझाई। अरे आचार देवो ये तो शास्त्रो महान रचा अने छता पोतानुं नाम नत लिख्युं। कुंकुन आचार्य देव ने ऐसे परमागमों की रचना की, कहीं मिलता होगा नहीं, अमृतचंद आचार्य देव का तो नाम मिलता है ना, मिलता है ना, उन्होंने समय सार की टीका है, अमृतचंद्र सूरी ऐसा शब्द है। अरे नाम है लेकिन कहा, तू जैसा सोचता है ऐसा मैं नहीं हूं, मैं स्वरूप गुप्त हूं। तू ऐसा दिखता है कि मैं कौन हूं, शास्त्र की टीका लिखने वाला हूं, शास्त्र टीका का विकल्प है, मैं लिखने में नहीं हूं, लिखने का विकल्प ने नहीं हूं, मैं तो कैसा हूं, स्वरूप गुप्त हूं। यही सही माने में आचार्य देव की पहचान है। तो जो जगत की प्रसिद्धि से दूर रहकर आत्मा की प्रसिद्धि माने ख्याति की है, टीका का नाम है ना उस समय सर, क्या नाम है, आत्मख्याति। जगत प्रसिद्धि नहीं है, मुझे किसकी प्रसिद्धि करनी है, अपने आत्मा की प्राप्ति करनी। तो ऐसे ही करके एक प्रयोजन सही रख के वस्तु स्वभाव के लक्ष्य से तत्व का अभ्यास, वांचन और विचार करना चाहिए।
जय जिनेन्द्र। आवतीकाल सवारनो कार्यक्रम सवारे 6:30 થી 6:40 स्तुति मंगल, 6:40 થી 8 जिनेन्द्र अभिषेक तथा 10 लक्षण की पूजा, 6:15 पूज्य गुरुदेव सिंह सीढ़ी प्रवचन, 10:15 शास्त्र स्वाध्याय श्री हेमंत भाई द्वारा, 10